ओम शांति। बागवान बाबा की इस अलौकिक बगिया में अनेक पुष्प हैं, जिनकी सुगंध से ये ब्राह्मण परिवार गुलजार है। उन्हीं पुष्पों में से एक पुष्प आदरणीय पुष्पा दीदी जी हम सबके समक्ष उपस्थित हैं। हम आपका एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। आपका जन्म राजधानी दिल्ली के एक सुसंस्कारी धार्मिक परिवार में हुआ। आप अपने शैक्षणिक जीवन में एक मेधावी छात्रा रहीं, पढ़ाई के साथ अन्य एक्टिविटीज, स्ट्रेच प्रोग्राम्स, एनसीसी, एनएसएस आदि समाज सेवाओं में भी आपने अहम भूमिका निभाई। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीतिक शास्त्र में बीए ऑनर्स और बीएड करने के बाद एमए की डिग्री हासिल की। आप बाल्यकाल से ही माता पिता के साथ ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आई और पिताश्री ब्रह्मा मातेश्वरी जगदम्बा की सम्मुख दृष्टि पाकर अपने अलौकिक जीवन की नींव रखी। बाद में 1976 में लौकिक पढ़ाई पूरी करके विश्व कल्याण हेतु स्वयं को ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। सभी वरिष्ठ दीदियों और दादियों का आपको विशेष सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसके फल स्वरूप आपने ईश्वरीय ज्ञान की गुह्यता को सहजता से स्पष्ट करने की कला प्राप्त की। वर्तमान में आप दिल्ली के मुख्य राजयोग केंद्र पांडव भवन तथा उनसे संबंधित सेवा केंद्रों की निदेशिका हैं। आप देश विदेश की सेवाओं में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हुए अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। रेडियो और टीवी चैनल्स पर पिछले 3 दशकों से आपके ढेरों वक्तव्य प्रसारित होते रहे हैं। साथ ही आप राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के जूरिस्ट विंग की चेयरपर्सन हैं। आज हम मृदुभाषी आदरणीय पुष्पा दीदी जी से लाभान्वित होंगे। विषय है सर्व खजानों से भरपूर होने की विधि। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा के बच्चे इस जन्म में इस अलौकिकता को प्राप्त करते हुए कितने कितने परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने स्वयं हमें सर्व प्राप्तियां कराई, सब खजाने दिए। अनुभव होता है ये सभी को? अनुभव होता है हाँ कि हम खजानों से भरपूर हैं? जो समझते हैं भरपूर हैं, हाथ खड़ा करें। अच्छा, बहुत अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। बस फिर तो विधि भी आपको पता ही है। अनुभवी जब बन जाते हैं तो विधि नेचुरल चलती है, उसका प्रयास भी नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी हम ब्राह्मण संगम युग पर ज्ञान के मंथन के अनुसार, अनुभवों के अनुसार, प्राप्तियों के अनुसार अपने को और आगे आगे तेजी से आगे बढ़ाने वाले हैं, इसलिए चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। तो आप सभी बाबा हम बच्चों को जो अनुभव दे रहा है, भरपूर कर रहा है, वो खजाने जिनको दुनिया जानती भी नहीं है। जानना तो एक बात है, लेकिन उसका पाना कितनी बड़ी बात है, और हम सब अपने जीवन में वो पा रहे हैं। तो मैं तो कहूंगी कि संगम युग ही अपने आप में इतना विशेष युग है, हीरे तुल्य युग है। क्योंकि बाबा कहते हैं फिर भी सतयुग में भले सर्व प्राप्तियां होंगी, लेकिन जो संगम की प्राप्ति है, खजाने हैं, वो उनसे भी ऊंचे हैं। इसलिए बाबा ने इस युग को हीरे तुल्य युग कहा है, क्योंकि जो खजाने हमें स्वयं बाबा दे रहा है वो हीरे माना सबसे बढ़िया, सबसे ऊंचे हैं। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट खजाना है, थोड़ा सोचिए आप कौन सा होगा। अनुभव तो है आप सबको, नॉलेज भी है उसकी, और वो हमें बाबा कहते हैं, बच्चे अपने संकल्पों को खजाना बनाओ। संकल्प सबसे अधिक शक्तिशाली और वैल्यूएबल है, जिससे ही हमारा जीवन महान बनता है और जिससे ही हम बाबा हमें जैसा बनाना चाहता है और हम जैसा बनना चाहते हैं वो सहज हो जाता है। ये आप सब भी समझते हैं इस बात को, क्योंकि संकल्प माना ही सोचना, थिंकिंग, विचार शक्ति। और हमारा सोचना कैसा है, जो बहुत प्योर है, साधारण नहीं, बहुत विशेष है, श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है। तो मेरे संकल्प सारे दिन में, क्योंकि हम बहुत कुछ सोचते ही रहते हैं, सोचना आत्मा की एक नेचुरल प्रक्रिया है, अभी भी सोच ही रहे हैं, और अभी कितनी अच्छी बात आप सब सोच रहे हैं, और कितना अच्छा आंसर दिया आप सबने कि हाँ हमको अनुभव है बाबा के खजानों का। तो हमारे संकल्प हमारे ही को बहुत भरपूर करते हैं। और वो कौन से संकल्प होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो बाबा ने हमें समझ दी है। दुनिया में भी देखो, कई लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाने वाले मिल जाते हैं कि ऐसा बोलो, ऐसा करो, कर्म ऐसा हो, परंतु वो कैसे हो, उसकी विधि क्या है और उसका आधार क्या है, ये नहीं इतना सुना पाते। और वो हमें बाबा ने समझाया, बच्चे आत्मा जैसा सोचती है, जो संकल्प हमारे सारा दिन चलते हैं, सबसे पहले तो वही आपका बड़ा खजाना है। अब कोई भी खजाना किसी के पास होता है तो उसको जरा भी वो व्यर्थ नहीं करना चाहता, कोई भी खजाना। हाँ, पैसा भी थोड़ा सा हो, कहीं कोई आपसे ज्यादा ले ले, हाँ, या जमीन पर भी गिर जाए तो आप उसको गिरा तो नहीं रहने देंगे ना, तुरंत उठाएंगे। कितना ध्यान देते हैं, हर चीज की गिनती करते हैं, हिसाब रखते हैं, वो तो विनाशी खजाने हैं। परंतु बाबा ने हमें संकल्प को भी खजाना कहा। हम भी समझते हैं, इस चीज को महसूस करते हैं अभी ज्ञान मिलने के बाद। तो संकल्प हमारे सारे दिन में किस प्रकार के चलते हैं, इस बात का जब हम ध्यान रखेंगे, या रखते ही हैं ऑलरेडी और रखेंगे, तो वो हमारा एक बहुत बड़ा खजाना है, वो व्यर्थ नहीं जाए। कि ऐसे ही नहीं, जो भी कुछ सोचते रहे हम सारे दिन में, कितने प्रकार की सोच हमारी चली, क्या हमने अपने ऊपर इस बात का ध्यान दिया। ये तो लोग भी कहते हैं नेगेटिव नहीं होना चाहिए सोच, लेकिन व्यर्थ भी नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए। इतनी सूक्ष्मता प्यारे बाबा ने हम बच्चों को दी है। जैसे खजाने को कोई गंवाता नहीं है, और मैं सारा दिन ऐसे ही सोचती रहूं, कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में, कभी किसी वस्तु पदार्थ के बारे में, हाँ कभी जो होना ही नहीं है उस बारे में ख्याली ख्याल भी चलाते रहते हैं, ये हो जाए वो हो जाए। तो बाबा ने हमें नॉलेज भी है साथ में दी है, बच्चे जो होना नहीं है, जो हो चुका है आप क्यों सोचते हो, जो वापिस नहीं आना है आप क्यों सोचते हो, जो बीत चुका है उसके बारे में क्यों सोचते हो। तो इसका विस्तार करें तो आपको बहुत सारी बातें अपने ध्यान पर आएंगी। कि हम क्या क्या सोच लेते हैं जो नहीं सोचना चाहिए। तो इस हिसाब से मुझे क्या ध्यान रखना आवश्यक है कि मेरा संकल्प कैसा होना चाहिए, ये ध्यान रखना आवश्यक है। ये तो पता है कि जो बीत चुका वो नहीं सोचना, व्यर्थ भी नहीं सोचना, नेगेटिव भी नहीं सोचना, तो मुझे क्या सोचना है, ये भी बाबा ने हमें समझ दी है कि बच्चे हमेशा अपने संकल्प को श्रेष्ठ रखो। और वो श्रेष्ठ तब नेचुरल हो सकता है, सहज हो सकता है, जो श्रीमत हमको मिलती है उसके अनुसार हम सोचें। सुबह आँख खुलते ही मेरा पहला संकल्प कौन सा होता है, और ये हम कितने भाग्यशाली बच्चे हैं कि हमें मालूम है और वैसा ही हम सोचते हैं। उठते ही आँख खुलते ही मुख से निकलता है प्यारा बाबा, मुख चाहे ना भी बोले अंतरात्मा बोलती है अंदर से, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बस बाबा ही आंखों में, बाबा ही हमारे दिल दिमाग में, पहले ही पहला ही संकल्प। तो आज सबसे पहले अपने अंदर इस बात को दृढ़ता से ले लेना है। उसके आप अनुभवी भी हैं, लेकिन फिर भी बाबा हम बच्चों को अटेंशन पर बार बार इसलिए देते हैं कि कभी कभी कोई कोई बातें, या रात को कुछ सोचते हुए या किसी समस्या का चिंतन करते हुए नींद आ भी गई, जबकि हमारी दिनचर्या में ये नहीं है, है रात को गुड नाइट बाबा को करते करते हम सो जाएं। इस पर दादी गुलजार कई बार हमको बड़ा हंसाया करते थे, कहते थे रात को अपने को खाली होकर के सोते हो, बाबा तो भरपूर करता है खजानों से। तो दादी इसलिए कहती थी, हंसती थी दादी, कि खाली किस बात से होना है, कि और कोई बातें मन में ना हो और बाबा को सुना के सो। तो कभी कभी कई कहते हैं ना, नींद आ जाती है, हम चार्ट भी नहीं लिख सकते हैं, बाबा को बता भी नहीं सकते हैं। तो दादी कहती थी, अच्छा पलंग पे बैठते ही लुढ़क जाते हो, दो मिनट, चार मिनट, पांच मिनट तो लग ही जाते हैं ना। और अच्छा तो यही है कि बैठ करके विधिवत बाबा को सुनाया जाए। और अभी ही देखो, दो चार दिन पहले बाबा की मुरली थी, दो दिन पहले, कि रात को सोने से पहले आधा घंटा बाबा को याद करके सोवा, व्यक्त बाप दादा ने भी कहा ये हमारी दिनचर्या में होना चाहिए। तो इन सारी बातों का कनेक्शन हमारे संकल्प के साथ है, क्योंकि संकल्प बीज है। तो जैसा बीज वैसा फल, ये हम सब कहते और जानते हैं अच्छी तरह से। तो जो मेरा बीज है, सारी दिनचर्या का आधार है, आत्मा के संकल्प ही, उस पर मेरा कितना ध्यान है। तो लहर में नहीं बह जाना सोचने की, विशेष रूप से। यहां तक कि कई अपना अनुभव सुनाते हैं, हम योग में बैठे तो एक संकल्प आया, पर मैं उसी में चली गई, सोचती रही सोचती रही, पता ही नहीं चला कब लाल बत्ती से सफेद बत्ती हो गई। अब बताइए, लाल बत्ती तो हुई थी कमाई के लिए, हाँ, और हमने उस कमाई को कहाँ कर दिया, और सफेद बत्ती हो गई, पता ही नहीं चला। या तब पता चला, ध्यान पर आया कि ओहो, अब तो योग का टाइम ही पूरा हो चुका है और मैं किस चिंतन में गई हुई थी। अब उन चिंतन का वर्णन करना तो व्यर्थ ही है, आप सब जानते भी हैं, और हर एक का उसमें सोचना भी अलग अलग प्रकार का होता है, कोई का किसी क्षेत्र का, कोई का किसी प्रकार की अपनी नेचर का, या जो भी कुछ होता है। तो ये आवश्यक है कि मैं अपने संकल्पों अर्थात सोच को ही बहुत ऊंचा बनाऊं, साधारण नहीं। जैसे स्थूल रीति से हम अपनी हर बात को कितना अच्छा बनाना चाहते हैं, पहनूं अच्छा, खाऊं अच्छा, हाँ गाऊं अच्छा, देखूं अच्छा, बोलूं अच्छा, पता चलता है ना, क्योंकि बाहर सब कुछ, तो मैं सोचूं ही अच्छा, दूसरा सोचूं ही नहीं। अगर दूसरा आए भी जो अच्छा नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो आपकी सद्बुद्धि है, दिव्य बुद्धि है, भगवान ने वो वरदान दिया आपको, ज्ञान से बुद्धि खुल गई है, तो मैं सोचूं भी अच्छा ही, दूसरा आए सोच तो तुरंत उसको हटा दो कि इस सोचने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जैसा सोचूंगी वो बीज है, उसका फल वैसा मेरे सामने आएगा। संकल्प हमारा क्वालिटी वाला हो, जैसे बीज क्वालिटी वाला लेते हैं तो फल अच्छा आता है, तो और बातों में हमको जैसे रहता अच्छा से अच्छा होना चाहिए, ऐसे ही मेरा संकल्प हमेशा समर्थ हो, शक्तिशाली, हमेशा शुद्ध संकल्प हो, उसमें मैं आत्मा रमण करती रहूं, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। मुझे कोई कह नहीं रहा है, कोई पूछ थोड़ा रहा है, हाँ, या चलो किसी को बहुत आभास भी हो जाए, शायद इसका मन परेशान है, फिर भी वो आपके लिए क्या करेगा, यही कहेगा परेशान मत हो, वो आपको पता ही है ऑलरेडी। तो मुझे स्वयं की अपनी आदत बनानी है कि मैं अच्छा सोचूं, बस अच्छा मींस जो बाबा ने कहा है जैसा सोचने को, और ये मालूम ही है कि पॉजिटिव सोचना, शुद्ध संकल्प ही अच्छे संकल्प होते हैं। बाबा की शिक्षा अनुसार, जो ज्ञान अनुसार समझ बाबा ने दी है, वैसा सोचना ही अच्छा होता है। सबके प्रति शुभ सोचना, अपने प्रति शुभ सोचना, अच्छा जो भी कुछ है, अगर बाबा कहते हैं आपको ठीक भी नहीं दिखाई दे रहा, गलत भी दिखाई दे रहा है, लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो भी आप पॉजिटिव सोच रखो, चाहे वो किसी के प्रति भी है। मेरे स्वयं प्रति भी अच्छा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि तब मैं कुछ और सोचना शुरू कर दूं कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो मैं भी ऐसा ही करूंगी, तो फिर मैं कहां अच्छी ठहरी। ये थॉट भी आना कि मैं भी ऐसा ही करूंगी, ये अपने आप में ही ऊंचा सोच नहीं है। इसी ही एक सेंटेंस से आप अंदाज लगा लो कि मेरा सोच कैसा होना चाहिए। तो बाबा ने हम बच्चों को सबसे बड़ा खजाना जो सहज जमा हो सकता है और हम कर रहे हैं, हाँ, वो है संकल्प का खजाना। और उसकी विधि भी यही है कि हम अपने संकल्पों को ऊंचा बनाएं, हाँ, श्रेष्ठ बनाएं, पवित्र बनाएं। और इसीलिए बाबा ने हमें समय की वैल्यू दी है कि ये संगम युग सबसे वैल्यूएबल युग है, इसका एक एक सेकंड बहुत महत्व रखता है। तो जब समय की हमें समझ मिल गई है कि ये समय हमारा जन्म जन्म का भाग्य जमा करने का समय है संगम युग पर, बाकी युगों में तो हम धीरे 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 अपने खजानों को कम करते चले जाएंगे रोल के अकॉर्डिंग, हाँ, क्योंकि सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग आता है, पर जमा करने का जो समय है वो अभी का है। अभी मैं अपने समय की वैल्यू को समझ कर चलूं। और इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को हमारी दिनचर्या बनाई है। लोग तो सोए रहते, देखो आप जग करके योग करके अपना खजाना जमा कर रहे होते हो, 3:30 बजे से, कई 2:30 बजे से भी उठ जाते हैं। अमृत वेला हमारे लिए कितना अमृत समान तकदीर बनाने का समय बन जाता है। तो यह समय संगम युग पर हमारे भाग्य को बनाने के लिए, तो इसे भी हम बहुत बड़ा खजाना, दुनिया में भी समय की वैल्यू समझते हैं लोग, परंतु समय को इस रीति से वो खर्च करें कि उसमें हमारा जन्म जन्म का भाग्य जमा हो जाए, ये हम संगम पर ही हम बच्चे करते हैं। बाबा ने एक बार अव्यक्त रूप से कहा हुआ है कि संगम का एक एक सेकंड महत्व रखता है, और संगम के हर सेकंड का कनेक्शन हमारे कई जन्मों के साथ है। आप सोचो कितनी बड़ी बात है कि हम संगम पर अपना इतना भाग्य बनाते हैं, इतने खजाने प्राप्तियों को जमा करते हैं आगे पाने के लिए, भविष्य अपना, हमारा सतयुग के जन्म 21 जन्म तो विशेष है ही, जिसमें हमारा भाग्य बना ही हुआ है, बन ही रहा है, और आगे के जन्म भी वैल्यूएबल हो जाते हैं। तो जैसे बाबा ने हमें सारे दिन की दिनचर्या दी है, तो सचमुच क्या मेरी दिनचर्या वैसी ही चलती है, चाहे वो अमृत वेला है, चाहे प्रातः क्लास है, चाहे सारे दिन की है। मालूम है बाबा ने कहा है कि कर्म योगी बनकर चलो, हमने अमृत वेले अपनी ज्ञान रत्नों से झोली भरी, फिर हम अपने कर्म क्षेत्र पे गए, हाँ, चाहे घर में रहते हैं, चाहे सेंटर पे रहते हैं, हर एक की प्रवृत्ति अपनी अपनी है, कारोबार अपनी अपनी है, तो उस कारोबार में क्योंकि बाबा ने बैलेंस दिया हर बात का, तो मैं कर्म योगी बनकर रहूं, वो मेरा एक ऐसा सेवा का स्थान है जहां पर भी मैं आत्मा हूं, उसमें मेरे द्वारा किस प्रकार के कर्म चल रहे हैं और कितना मेरा बाबा के साथ योग चल रहा है, तो मेरे ये खजाने, हाँ समय भी खजाना बन जाता है जो मेरा भाग्य बनाता है। तो जैसे बाबा ने हमें दिनचर्या सारे दिन की दी है, उसके साथ साथ बाबा हम बच्चों को कहते हैं, ये तो हुई स्थूल दिनचर्या, परंतु मन की भी दिनचर्या आपकी होनी चाहिए। स्थूल दिनचर्या को हम ध्यान पर रखते हैं तो मन का भी कनेक्शन है उसके साथ। अब मान लीजिए ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है, अब ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बज रहा है, उस समय मुझे बाबा की याद में रहना है। मैं किसी भी कर्म में व्यस्त हूँ, और सपोज आप ड्राइविंग ही कर रहे हैं, अब ड्राइविंग करते हुए आप सड़क पर तो खड़े नहीं हो सकते हैं, ड्राइविंग तो करते रहेंगे और आपका ध्यान भी रेड लाइट ग्रीन लाइट पे जाएगा ही, आसपास भी जाएगा ही, तो भी क्या मैंने अपनी ऐसी नेचर बनाई कि वो कर्म करते भी मेरा बुद्धि योग बाबा के साथ रहे। और यही तो कमाल है कि बाबा ने हमें ऐसी विधि सुनाई है, बच्चे आपका मन मेरे साथ लगा हुआ है, भले आपका कर्म चल रहा है, माताएं भंडारे के अंदर हैं, या आप किसी ऑफिस में किसी बहुत बड़ी सीट पर भी बैठे हैं, पोस्ट पर भी बैठे हैं, तो भी भले आपके सामने भी कोई प्राणी है, आप वैसे तो अपने राजयोगी जीवन के आधार से उसको भी प्रेरणा दे सकते हैं कि अभी 2 मिनट हमें साइलेंस में बैठना है, लेकिन सपोज कहने की स्थिति नहीं भी है तो भी मेरे अंदर अपने आप को आता है कि ये मेरे योग का समय है। और कई भाई बहन तो बड़े होशियार हैं, उन्होंने अपने घड़ी में फोन में वो लगाया होता है, वो बज उठता है उस समय, तो एक सबको इंडिकेशन मिल जाती है। और कई तो पूछ भी लेते हैं, भाई ये ट्यून क्यों बज रही है आपकी, चाहे वो 1 मिनट का ही गीत होता है, तो ध्यान जाता है अपना और हम कह पाते हैं दूसरे को कि प्लीज साइलेंस। फिर बाद में हमको मौका मिल जाता है कि ये साइलेंस हमने क्यों की और कैसे की, तो एक सेवा भी हो जाती है। तो मेरी दिनचर्या में साथ साथ मेरी मन की दिनचर्या भी ऐसी अच्छी रहे, ये है खजाने जमा करना। ऐसे नहीं कि अच्छा चलो गीत बज रहा है और मैं फिर भी अपने उस बातचीत में, या फिर भी मैं थोड़ी सी केयरलेस होकर के कुछ भी सोच रही हूँ, तो ये कैसा लगता है आप सोचो कि मैंने समय को और अपने संकल्पों को कितना महत्वशाली समझा। मैं तो इसको कहूंगी कि मैंने खुद के ही संकल्पों को कितनी रिस्पेक्ट दी। हाँ, बाबा ने हमें समझदार बनाया है हर रीति से, कोई सिचुएशन रेयर ऑफ रेयर ऐसी होती है कि हमको टोटल उसमें अपना मन बुद्धि समय लगाना पड़ता है, तो तुरंत उसके बाद भी तो हम बैठ सकते हैं ना बाबा की याद में कि प्यारे बाबा, क्योंकि कोई कोई ऐसे प्रश्न करते हैं, इसलिए मैं आपको वो बातें सारी बता रही हूँ कि प्यारे बाबा ये 2 मिनट ऐसे पार हुए। बाबा तो बुद्धि में जब होता ही है, ये आदत बन जाती है, तो उस टाइम भी होता है, पर फिर भी हमको जरूरी वहां कंसंट्रेट करना पड़ रहा है, तो हम उसके बाद भी बाबा से वो 2 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम, भले क्योंकि घड़ियां भी तो 11 से 11:15 5 मिनट आगे पीछे ऊपर नीचे हो ही जाती है, पर मेरे मन की घड़ी, मन का तार तो बाबा से जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं बाबा उस समय मैं उस बात में इतनी व्यस्त थी या इतना जरूरी था, अब मैं आपसे बड़ी मीठी मीठी रूरिहान कर रही हूँ, तो देखा गया है कि वो और ही अंदर से जिगरी बाबा के साथ प्यार और संकल्प इतना जुड़ जाता है कि वो 1 मिनट का भी एक करंट जैसे शक्ति का बाबा से हम अनुभव करते हैं। ऐसा मैं अपने अनुभव से आपको सुना रही हूँ। तो संगम के ये खजाने अविनाशी हैं, जो जमा ही जमा होते हैं और बहुत सहज रीति से होते हैं। तो हमें समय की भी वैल्यू को समझ कर चलना है कि ये भी एक बहुत बड़ा खजाना है। दुनियावी रीति से भी समय बहुत महत्व रखता है, क्योंकि समय हमेशा आगे की ओर लेके जाता है, तो मुझे वो खुद आगे जाता है, समय कभी पीछे की ओर नहीं आता है। तो जब वो आगे की ओर जा रहा है, उसकी ये क्वालिटी है, और संगम युग है ही ऐसा समय जबकि मुझे आत्मा को इतना आगे ले जा रहा है कि मैं इतना ऊंचा भविष्य अपना जमा कर रही हूँ, बना रही हूँ, तो मुझे भी आगे की ओर ही जाना है, अपने जीवन को ऐसा बनाना है, उसकी वैल्यू को समझ कर चलना है कि ये संगम युग का समय और उसमें मेरा ये ब्राह्मण जन्म और उसमें भी इतना ऊंचा श्रेष्ठ लक्ष्य, महान लक्ष्य भगवान की शिक्षाओं के आधार से मेरा बन रहा है। तो बाबा ने हम सबको इस बात के महत्व के, इस खजाने को बताने के लिए ज्ञान का खजाना दिया है। इतना ज्ञान जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, त्रिकालदर्शी पिता ने स्वयं हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बना दिया। कभी आपने सोचा था हम मास्टर त्रिकालदर्शी बनेंगे? आया था कभी किसी को ख्याल? हाँ, सोच ही नहीं सकते थे, सपना भी नहीं आ सकता इस बात का। तो हाँ, ब्रह्मा बाबा ये अपना अनुभव सुनाते हैं, हाँ, कहाँ भूला हुआ था सब कुछ और बाबा ने कैसे आकर के जगा दिया। तो बाबा ने हम बच्चों को आप समान, हमें मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिनेत्री बना दिया, त्रिलोकी नाथ, तीनों लोकों का ज्ञान दे दिया हमको। तो ये ज्ञान का खजाना हमको मिला। ज्ञान माना ही समझ रखना। ज्ञानी हम कहते हैं, हम ज्ञानी हैं, हाँ, बाबा ने हमें ज्ञानी बनाया है। दूसरे जो इस ज्ञान को नहीं सुनते हैं, वहां उनके लिए हम सोचते हैं जिज्ञासु है, ये जिज्ञासा लेकर आया है, क्योंकि इसको तो कुछ भी मालूम नहीं है। और ये आपको भगवान ने, देखो, इतनी बड़ी सेवा कहें, जिम्मेदारी कहें, भाग्य कहें, जो दूसरे को जगाने का दिया है, तो इसका मतलब मैं कितनी समझदार बन गई, कितना बाबा ने हमको सारी नॉलेज दे करके, पास्ट की भी, प्रेजेंट की भी, फ्यूचर की भी, हाँ, नॉलेजफुल बना दिया। तो मेरा सब कुछ, हाँ, सोचना, बोलना, करना ज्ञान के अनुसार रहे। ज्ञान माना समझ, और वो समझ है श्रीमत। तो उसके अनुसार मेरा कर्म चलता रहे, मेरा जीवन चलता रहे। लौकिक रीति से भी कोई गलती गड़बड़ करता है, कहते तुम्हें समझ नहीं है क्या? तो समझदार व्यक्ति जीवन में कैसे आगे बढ़ जाता है। और हमको तो बाबा कितना बेहद का समझदार बनाता है, जिसने हमें भविष्य का भी ज्ञान दे दिया कि आपका भविष्य कितना ऊंचा है, यहाँ तक कि पास्ट का भी ज्ञान दे दिया। बच्चे, आपको उस समय समझ नहीं थी तो आप क्या क्या करते आए? मुरली में भी बाबा कई बार कहते, कितने बेसमझ थे तुम और अब क्या बन गए, बोलिए, सब बन गए ना समझदार। इस सारी सभा में ही देखो, सारे समझदार बैठे हैं, एक भी बेसमझ नहीं बैठा, एक भी। तो अपने ऊपर नाज नहीं होता आपको? होता है या नहीं? अच्छा, ताली बजाकर प्रमाणित कर दिया कि बहुत होता है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है ना आपने आपको ही, हम समझदार हैं। तो समझदार माना ही क्या, कि हम सब कुछ समझ से करें, समझ से करें। नहीं हो पाया वो भी बाबा समझ देता, देखो कि अच्छा बच्चे, कोई बात नहीं, आप अंदर से रियलाइज करो, मेरे से शक्ति लो, तो फिर हो जाएगा। कोई कोई बाबा को बच्चे लिखते भी हैं, पत्र लिखते हैं, हाँ, पत्र लिख कर पेटियों में डाल के आते हो ना, हाँ, बाबा के घर में पेटियां रखी हैं, बाबा के कमरों में, हाँ, वो भरी पड़ी रहती है लेटर्स के, वो दूसरी पेटी इतनी नहीं भरी हुई होती, वो लेटर्स वाली पेटी ज्यादा भरी हुई होती है, हाँ, ये भी आपको समझ तो है ही सारी। तो बाबा ने, देखो, हम बाबा को क्यों लिखते हैं, बाबा मैं अपना पुरुषार्थ अच्छा करूंगी, या कोई महसूसता लिखते होंगे, कोई अपना सुधार लिखते होंगे, जो भी कुछ, कोई अपने दिल के भाव लिखते होंगे, तो ये भी बाबा हमें महसूस कराता है ना। कि कैसे हमें बाबा की श्रीमत के अनुसार चलना है। माना अब हमको बाबा ने समझ दे दी है और मेरे से गलती हुई और अब मेरे से नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बाबा को चाहे कागज पर लिखो चाहे दिल से बाबा को कहो, हाँ रूरिहान करो, महसूस करो। तो ये ज्ञान का खजाना हमें इतना समझदार बना देता है, जो बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण चोटी कहलाते हो, ये जीवन चोटी है। हाँ, ब्राह्मणों को इसीलिए स्थूल में चोटी दिखाई गई है, क्योंकि ज्ञान से आप इतने ऊंचे बन जाते हो। हर बात की समझ बाबा ने हमको दे दी है। हर कर्म, कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसका ज्ञान आपको नहीं। एक बार दादी सुना रहे थे कि कभी आप मूंझते हो, कई बार भाई हाँ ऐसा सवाल करते हैं, चाहे बिजनेस में जॉब में कोई प्रॉब्लम आती है, कहते मेरे को समझ ही नहीं आ रहा अब मैं क्या निर्णय लूं। तो दादी ने कहा उस समय आप ब्रह्मा बाबा को सामने लाओ कि यही प्रॉब्लम अगर बाबा के सामने होती, जो प्रॉब्लम आपके आगे आई है वही बात मान ली, क्योंकि बाबा ने तो बिजनेस भी किया था, सब कुछ किया था, गृहस्थी भी संभाली थी, समाज में भी नाम कमाया था, लौकिक जीवन में ही बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो तो आप सब सुनते रहते हो। अगर यही समस्या बाबा के आगे आती तो बाबा क्या करते, आंसर आपको आ जाएगा। तो बस मुझे क्या करना है, यही समस्या। बाबा भी बाल बच्चों दार रहा ना, बाबा क्या करते। फिर बाबा ने तो इतना बेहद का परिवार संभाला, वैरायटी बच्चे संभाले, सब कुछ जिम्मेदारियां संभाली, कोई जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। तो आपको आंसर मिल जाएगा कि इस उसमें मुझे क्या करना चाहिए। हिम्मत रखेंगे और कर लेंगे वैसा ही, तो बाबा आपको इसी ही समय इसी ही जन्म में उसका रिटर्न ना दे, ये हो नहीं सकता, पक्की बात है। हाँ ये जरूरी है कि जरूरी नहीं कि उसी समय ही दे, उसी घड़ी दे, वो भी बाबा हम बच्चों के लिए, क्योंकि बाप त्रिकालदर्शी है, जानते हैं कि इसका फायदा कब होने वाला है, इस मेरे बच्चे को इसका असली प्राप्ति का अनुभव या जो उसको चाहिए वो वास्तव में इसको कब मिलेगा, आज कल या कभी भी। लेकिन आपको बाबा उसका रिटर्न आपके त्याग का कहो, आपकी सहनशीलता का कहो, वो अवश्य मिलेगा। तो ये है ज्ञान का खजाना, इसको गहराई से हम जितना लेंगे उतना हमारे जीवन के अंदर सहज ही प्राप्तियों का अनुभव होगा, आत्मा को अंदर ये महसूस होगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत भाग्यशाली हूं। और बहुत सारे ब्राह्मणों के ऐसे अनुभव हैं भी, तो जब दूसरे ऐसा अनुभव कर सकते हैं तो मैं भी तो कर सकती हूं ना, मुझ आत्मा के अंदर भी तो बाबा ने वो शक्तियां दी है ना, इसलिए बाबा हमें शक्तियों का खजाना देता है। वो रूहानी शक्तियां जो हमारी आत्मा के अनेक जन्मों के खाते को क्लियर कर देती हैं, ये बहुत बड़ा खजाना है। आज संसार में मनुष्य आत्माएं बहुत कमजोर हो चुकी हैं और इतनी सारी समस्याएं उनकी कमजोरी का ही कारण है, और हम बाबा के बन गए और बाबा ने हमें शक्तियां देनी शुरू कर दी। बच्चे सिर्फ बुद्धि का योग मेरे साथ रखो बस, इसीलिए योग की सब्जेक्ट दी विशेष, ज्ञान की सब्जेक्ट दी तो साथ में योग की सब्जेक्ट दी, कि ज्ञान से जो आपको समझ आया है उसे आप प्रैक्टिकल कैसे करो। जो बातें हम कई जन्मों से कहते भी आए लेकिन कर नहीं पाए, विषय विकार मिटाओ बहुत गाया लेकिन मिटाने की शक्ति आपको अब मिल रही है बाबा से। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को योग को इतना महत्व दिया है, बच्चे अपना मन मेरे साथ लगा के रखो, क्योंकि योग से आत्मा में शक्तियां आती हैं और शक्ति से आप बाबा की श्रीमत को जो ज्ञान मिला है, हमारी अंतरात्मा ने जिस समझ को ग्रहण किया है उसको मैं स्वरूप में सहज ला पाऊं, मुझे कोई कष्ट महसूस नहीं हो। अभी एक सहनशीलता, सहन शक्ति को ही लीजिए, वो गुण भी है और शक्ति भी है, उससे आपकी कितनी बातें हल हो जाती है, आप कितने झगड़ों से सेफ रहते हो, कितनी तेरी मेरी बातों से सेफ रहते हो, कितना एक चुप करने से ही सहन शक्ति का महसूसता आती है और शांति हो जाती है। एक चुप सौ सुख, और ये चुप सहन शक्ति से ही होता है। आप सब कहते पहले तो मैं बहुत झगड़ा कर लेता था, भाई भी अपना अनुभव सुनाते, माताएं भी सुनाती हैं, मैं बोलती थी और झगड़ा ही झगड़ा। अब मैं बिल्कुल नहीं बोलती दीदी, बिल्कुल चुप हो जाती हूँ। हमने कहा अच्छा, तो आपकी तो शक्ति बहुत बढ़ गई ना माताएं, सहन शक्ति। हाँ या ना? हाँ। ऐसे सभी शक्तियां, ये तो एक मिसाल आता है। बाबा ने हमें शक्तियां सारी, आठ शक्तियां तो मुख्य सुनाते ही है, हम सभी जानते ही है। अन्य शक्तियां, सबसे पहले तो पवित्रता की शक्ति, कितना बड़ा खजाना है ये। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, और पवित्रता संसार की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत। और उस ताकत को आपने अपने जीवन में पाया है, ये खजाना है। आपने अपने जीवन से उसके आधार से विकारों को जीता है, ये खजाना है। इससे बढ़िया खजाना और कौन सा होगा? अनमोल खजाना है, अनमोल, जिसकी वैल्यू किसी भी आधार से आंकी नहीं जा सकती, इतना बड़ा खजाना है ये। तो इतना माला माल हमको बाबा बनाता है कि बच्चे आप पवित्रता की शक्ति वाली आत्माएं देव तुल्य बन रही हो। ये खजाना संगम पर हमें महसूस होता है। सतयुग में तो आप होंगे ही पवित्र स्वरूप, अपवित्रता तो अंश मात्र भी वहां नहीं होगी। और यहाँ तो आप देख रहे हो सारी दुनिया कितनी पतित बन चुकी है, कितनी गिरावट में जा रही है सारी दुनिया, और हम उतना ही ऊंचा उठते जा रहे हैं। किस बल से? पवित्रता के खजाने से, पवित्रता की शक्ति से इतने ऊंचे उठते जा रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें आपको हिला नहीं सकती, चाहे संसार की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे स्वयं की हो, इतनी आप आत्म शक्तिशाली बन चुके हैं। तो ऐसा खजाना है किसी अन्य के पास? हाँ, बड़े बड़े महात्मा अब आकर के आप सबकी महिमा गाते हैं, ऐसे ही ना सुरेश भ्राता जी, देखा था, सुना ना अभी ORC में। तो देखो कितनी कमाल होती जा रही है, ये पवित्रता का आधार, और ये खजाना संगम पर मिलता है। और संगम पर हमारे सामने दोनों प्रकार की बातें, अंतर महसूस होता है कि देखो वो दुनिया क्या बन गई है और हमारी दुनिया, मेरा संसार कितना शुद्ध है, चाहे मैं स्वयं हूँ, चाहे ब्राह्मण परिवार है, पूरा संगम युग है। ये हमको बाबा ने वरदान दिया है इस समय, पवित्र बनो, योगी बनो, और यही हमारे जीवन का सर्वोच्च खजाना है, जिससे हम अन्य शक्तियां भी जीवन में लाते जा रहे हैं। एकाग्रता की शक्ति, अन्य सब शक्तियां हमारे जीवन में आती चली जा रही हैं। तो बाबा ने संगम पर हमको ये भरपूर किया इन खजानों से। ऐसे ही गुणों के खजाने, गुण तो बहुत बड़े खजाने हैं। गुण से ही देखो आप क्या बन जाते हो। गुणवान होना तो लोग भी समझते हैं, परंतु गुणवान बने कैसे? ये बाबा ने हमें विधि दी है कि आप अपने निजी गुणों में पहले तो आ जाओ। कितना सहज, देखो जैसे एक माता पिता, कोई बच्चा बिगड़ जाता है उसको कहते जब तू छोटा था तो बड़ा अच्छा था, ऐसा नहीं था जैसे आज है तू, तब तू बड़ा कहना मानता था, बड़ा शांत रहता था, बड़ी अच्छी पढ़ाई पढ़ता था। उसको महसूस होता है, ना भी महसूस हो तो भी उसको समय महसूस करवाता है। लेकिन बाबा ने तो हमें इतना ऊंचा भविष्य बता दिया, बच्चे आप तो देवता कुल के आत्मा थे, तो अपने उस आदि स्वरूप को अनादि स्वरूप को याद करो। तो ओरिजिनल में ही हम गुणवान आत्माएं हैं, इतनी शुद्ध पवित्र आत्मा ऐसा पाठ बजा कर आई है, इतना ऊंचा। और निजी गुण बाबा ने बता दिए कि बच्चे आप साधारण आत्मा नहीं हो, आप शुद्ध आत्मा हो। मैं आत्मा हूं ये पक्का करते हो, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं, मेरी ओरिजिनलिटी क्या है, ओरिजिनल में मैं क्या हूं? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति ही मेरी नेचर है, यही मेरा गुण है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, यही मेरा नेचुरल गुण है, परंतु वो मेरा गुण कहां चला गया? तो बाबा ने हमें उस गुण में टिकाया, उस गुण की अनुभूति कराई। इवन यही नहीं, सिर्फ ज्ञान ही दिया, लेकिन साथ साथ हमें सत्यता बतला करके उसका अनुभव कराया। आज कौन ब्राह्मण आत्मा है जो ये अनुभव न सुनाए कि मैं शांत हूं? हर एक कहता है हाँ मैं शांत हूं। कभी अशांत हो जाता हूं क्योंकि मेरा पुराना संस्कार आके मुझे टकराता है, और उसको भी मिटाने की ताकत बाबा ने हमें योग बल से दे दी, शक्तियां दे दी, गुण दे दिए, तो योग बल बन गया हमारे लिए ना। तो ये धारणा भी हमारे जीवन में, हाँ सब्जेक्ट ही बाबा ने हमें धारणा का दे दिया। चार सब्जेक्ट है ना हमारे, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन चारों से हमारा भाग्य बनता है, हमारे खजाने जमा होते हैं। तो धारणा हमारे जीवन में गुणों का खजाना लाती है, और गुण भी जो है वो एक अनमोल खजाना है, क्योंकि गुण अपने बन जाते हैं और खजाने अपने नहीं होते कभी भी। कभी भी आप देख लो, स्थूल खजाने जितने हैं आप कभी नहीं कह सकते सारे मेरे अपने हैं। अगर आपके भी खमाए हुए बाप के पास होते हैं तो बेटा उस पे हक लगाता है, चलो और कोई लगा पाए या ना लगा पाए, संतान रची हुई तो हक लगाती ही है ना। कोई भी स्थूल खजाने, एक मिनट में शरीर छूट जाए तो सारे ही ओम शांति, हाँ बैंक में जो पड़ा है वो भी बैंक में ही पड़ा रहेगा। लेकिन जो बाबा ने हमें खजाने, ईश्वरीय खजाने दिए हैं, वो आपके ही हैं। दुनिया में और कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसी का ही हो सब कुछ, लेकिन ये हमारा ब्राह्मणों का देखो भाग्य, परम सौभाग्य, तकदीर देखो कितनी ऊंची है कि जो हमको इस समय मिल रहा है ना ईश्वरीय खजाने, वो सारे मेरे हैं। ऐसा सोचते हो, ये मैंने पुरुषार्थ किया, मैंने गुण लाए तो मेरे हैं सारे, इस पर और कोई क्या और उसका लाभ ले सकता है, बल्कि मेरे से छीन नहीं सकता। संगम पर ही देखो बाबा हमें ये अनुभव करा रहा है कि ये खजाने मेरे हैं। गुण किसके हो गए? आप गुणवान बने तो गुण किसके हैं सारे, बोलो? मेरे। शक्तियां किसकी हैं सारी? ढीला बोल रहे हो, मेरी। कम जमा किए क्या? तो अब और अच्छी तरह करना है, मेरी है। उसको कोई दूसरा लेना चाहेगा तो आपको खुशी होगी, क्योंकि आपको पता है मेरी बढ़ेगी घटेगी नहीं, और इसीलिए आप बांटते हो सबको बड़े प्यार से, गुण भी बांटते हो, शक्तियां भी बांटते हो। दुनिया में कोई अपने खजाने बांटता नहीं है ऐसे, सोच समझ के बांटता है, बहुत सोच सोच के। अच्छा इसको दूं तो कितना दूंगा, ये नाराज तो नहीं होगा, अच्छा इसको क्यों इतना दूं, इसने मेरे साथ कभी कोई अच्छा किया है क्या? लेकिन हम बाबा के इतनी ऊंची सोच रखने वाले बच्चे हैं कि ये मेरे खजाने, इस आत्मा को जो चाहिए मैं दे दूं। अच्छा शक्ति चाहिए, गुण चाहिए, ज्ञान चाहिए, और भर भर के आप देना चाहते हो। हाँ अगला थक जाए चाहे, आप तो खुशी से दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है जो मेरे पास है वो तो मेरे हैं, वो तो कम होने नहीं है और बढ़ने हैं। तो ये भी एक जादू है इन ईश्वरीय खजानों का, तो असली जादू है ना। बोलो हाँ, अब ताली बजाओ ना। ये है कमाल संगम के खजानों की, जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है। इसलिए तो ये खजाने साधारण नहीं, ये ईश्वरीय खजाने हैं, जिसकी प्राप्ति हमको हो रही है। क्यों हमको हो रही है बोलो? हमको ही क्यों हो रही है? हाँ, ये नशा होना चाहिए ना, क्योंकि मैं ईश्वरीय संतान हूं, मैं उसकी अधिकारी बन गई। तो जो संतान बना है बाबा का और वो आज्ञाकारी है, तो उन खजानों की वो मालिक हो गई। इतनी सहजता से बाबा ने हमें इस ब्राह्मण जीवन में, योगी जीवन में, इन सब खजानों का मालिक बना दिया। और उस पर मेरा पूरा हक है, और मैं जितना चाहूं ले सकती हूं, जितना बढ़ाना चाहूं बढ़ा सकती हूं। लेकिन लापरवाही की तो गंवाने का भी हो जाता है, तो अफसोस होगा, बाद में पश्चाताप होगा। नहीं तो, तो वो स्थिति आने ही नहीं देनी चाहिए, आएगी ही नहीं तब ही, क्योंकि अब मैं उस पर ध्यान रख रही हूं। इसलिए और इसीलिए चर्चा की जाती है नॉलेज होते हुए भी, ताकि मेरा बराबर उस पर अटेंशन रहे कि मेरे खजाने घटने नहीं हैं, बढ़ने ही बढ़ने हैं। और उस बढ़ाने की विधि भी, उसकी ताकत भी मेरे पास है, और मैं अपने इन अविनाशी खजानों को आत्मा कितना इंजॉय कर रही हूँ, उससे मैं कितनी सुखी हूँ, कितनी खुश हूँ। तो ये गुणों का खजाना भी हमारे जीवन में हमें बहुत ऊंचा धारणा मूर्त बनाता है। और आप देखो, जो भी गुणवान किसको व्यवहार में आता है, तो दूसरे को भी कितना सुख मिलता है। एक एक गुण को आप देख लो। हाँ, मान लीजिए नम्रता को ही आप देख लो। हाँ, नम्र स्वभाव का प्राणी खुद भी खुश रहता है, दूसरे भी उससे खुश रहते हैं। क्या गया अगर हम झुक गए, चलो मैंने गलती नहीं की है, दूसरा कह रहा है तुमने की है, चलो भाई मैंने की है। दिल से अगर मैं कहती, ऊपर से शब्दों से कहती हूँ, तो उसको भी पता है ये ऐसे टालने के लिए कर रहा है। हाँ, फिर भी चलो अच्छा रहता है, चलो शब्दों से भी कहा तो सही, झगड़ा तो नहीं हुआ ना कम से कम। तो एक नम्रता में ही मुझे कितनी प्राप्ति मिलती है कि मैं भी शांत, मैं भी खुश, और दूसरा भी शांत, वो भी खुश। जो इतने कोई कुछ दे दे आपको, बड़ी से बड़ी गिफ्ट, इतनी खुशी नहीं होगी जो इसमें खुशी होगी कि आपने दूसरे को भी खुश किया और झगड़ा कर दिया, समाप्त, एकदम हो गई शांति। तो संकल्प भी बच गए। देखो वो खजाना जो वेस्ट जाता, इसने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, मेरे साथ किया, मेरी गलती नहीं, कितना संकल्प चल पड़े, तो वो खजाने मैंने गंवाए ना। तो गुण भी मेरे को जमा करने की, अपने भाग्य को बनाने की, कितनी अच्छी बाबा ने एक गुणों की धारणा दी है जीवन के अंदर। तो धारणा सब्जेक्ट माना ही यही कि ज्ञान समझ मिला, योग से शक्ति मिल गई, अब मैं उसको स्वरूप में ले आऊं, बस मेरे स्वरूप माना जीवन में आ जाए, वो धारणा मेरे जीवन की बन जाए। तो गुणों से बाबा वैसे भी कहते हैं, हाँ, हर एक से गुण सीखो। एक है अपनी धारणाओं से हमारे अंदर गुण आते हैं, उसमें भी कई बार पुराने संस्कार कड़े होने के कारण टाइम लग जाता है। लेकिन जब मेरा ये लक्ष्य हो जाता है कि मुझे दूसरों से भी गुण सीखना है, तो उसमें और मदद मिल जाती है, जैसे सोने पे सुहागा हो जाता है। बाबा सुनाया करते थे सिंध में, दादी हमें बताती थी कई बातें ऐसी कि वहां एक भाई होता था जो भिन्न भिन्न वैरायटी टोपियां पहनता था। शौक होते हैं ना कईयों के, आप में से भी कईयों को होंगे, लेकिन वो एक अलग टोपी भी थी जो शायद वो आपने नहीं पहनी होगी। वो टोपी उसने बनवाई कि वो भिन्न भिन्न पक्षियों के जो पंख होते हैं ना, पक्षियों के, तोते के अलग होगा, कबूतर का अलग होगा, चिड़िया का अलग होगा, तो वो उन पंखों को अपनी टोपी में ऐड करता रहता था। वो टोपी ही पंखों की बनाई हुई थी। तो ब्रह्मा बाबा सुनाया करते, दादी कहती थी कि बाबा कहता था, देखो हाँ, उसका नाम लेके उस भाई का, कि वो इतनी अच्छी टोपी वैरायटी पंखों की पहनता है, बड़ी सुंदर लगती है सिर पे रखी हुई, तो तुम बच्चे भी हर एक के अंदर गुण देखते जाओ, मना अपने जीवन में गुण ऐड करते जाओ, तो आपके दिल दिमाग में वो गुण आता गया, माना आपकी टोपी वैसी सुंदर बनती गई, आप ऊंचे उठते जाओगे। तो गुण ग्राही बनने की बाबा ये विधि सुनाता था। तो ये भी देखो हमारा कितना बड़ा खजाना और शोभा देने वाला बन जाता है कि हमने किसी का अवगुण न देखना है न वर्णन करना है, बस मेरे खजाने मेरे गुण हैं जो भगवान मुझे दे रहा है, और जो दूसरों में भी गुण है। इतना बड़ा परिवार है, कोई आत्मा ऐसी नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो, ये बाबा ने ही कहा हुआ है। तो मुझे हर एक का गुण देखना है ना, तो मैं गुणग्राही आत्मा कितने सुंदर वैरायटी गुणों वाली बन जाऊंगी। जैसे बाबा ने ये भी कहा हुआ है, बाप दादा ने अव्यक्त रूप से, कि ताज में वैरायटी हीरे मोती वाला ताज कितना सुंदर लगता है। तो आपके सिर पर तो अभी से बाबा ने वो ताज डाल दिया, जो गुणों वाला चमकता हुआ है, आपका मस्तक ही बताता है ये कितनी गुणवान आत्मा है, कितनी इसके अंदर नम्रता है, मधुरता है, दया है, क्षमा है, ऐसी गुणवान। तो ये खजाने हमारे हमें कितना सुख देते हैं और दूसरों को भी सुखी करते हैं। मैं गुणवान हूं तो दूसरे को भी सुख मिलता है उसका, मैं मीठी हूं तो दूसरे को भी मीठा बोलना सुनना कितना प्रिय लगता है। तो मुझे स्वयं को ऐसे खजानों से भरपूर करना है। फिर जब ये सब होते हैं तो नेचुरली एक सबसे बड़ा खजाना हमारे जीवन में आ जाता है, वो है खुशी का खजाना। तो सबको बहुत अच्छी लगती है ना, खुशी तो सबको ही चाहिए, और है आप सबके पास, तो आप तो खुशी से भरपूर आत्माएं हैं, और खुशी तो हाँ सबसे ऊंची चीज है, सबसे बड़ी प्राप्ति है। दुनिया में लोग खुशी के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या नहीं करते, सोचो। खुश रहने के लिए तो करते हैं, रोटी तो 2 से 8 कोई खा नहीं सकता, चलो 3 खा लेगा। जो भी कुछ करना है उसकी तो लिमिटेशन होगी ना, पर खुशी तो अपरंपार चाहिए, सदा ही चाहिए, 24 घंटे चाहिए, और वो भगवान ने हमको दी है। तो मुझे अपनी खुशी को कम नहीं करना कभी, ये नहीं जरा सी बात हुई तो मेरी तो खुशी गायब हो गई, तो मेरी ताकत क्या हुई। खुशी हमारी शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का स्पष्ट, क्या शब्द कहूं बताओ, दिखा देता है सब। ये कितनी ज्ञानी है कि एक बात हुई और खुशी चली गई, यही ताकत है मेरे अंदर। कुछ भी हो जाए, दादी गुलजार का स्लोगन था पक्का, कुछ भी हो जाए क्या ना जाए, वाह भाई वाह क्या कहने खुशी ना जाए। ये तो आप जानते हैं ना, खुशी सबसे बड़ा खजाना है, बोलिए। हाँ जी हाँ, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है और वो कौन दे रहा है, बाबा। और उसके लिए बाबा क्या दे रहा है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बच्चे कैसे भी करके खुश रहो, चलो खुशी गई सेवा करो, खुशी आ जाएगी, करके देखो, पक्की बात है ये। खुशी कोई बात आपकी लेके जा रही है, मान लिया जाए, जाएगी नहीं आपकी खुशी। आप बहुत अच्छे सभी हाँ ज्ञानी योगी हो, अगर कोई भी बात खुशी लेके जा रही है, आप सेवा में लग जाओ, खुशी लौट आएगी। कई कहते हैं ना उस टाइम योग भी नहीं लगता, जब खुशी जाती है ना, क्योंकि बात ही अटक गई ना गले के अंदर, या गोली अटक जाए तो बोलना भी मुश्किल और खाना भी मुश्किल, कठिन हो जाता है ना बहुत। खुशी कोई भी बात अगर आपकी कम करती है खुशी को, तो उस बात को, कांटे को निकालो, हटाओ। तो अगर योग से, कई बार हम कहते हैं ना योग में बैठ जाओ, कहते हैं वो योग में तो और वो बात यहाँ अटक जाती है। तो अगर नहीं निकल रही है तो आप सेवा में लग जाओ। और कई बार बाबा ने कहा अच्छे अच्छे गीत बजाओ, हाँ अभी भी मुरली में था 2-4 दिन पहले, अच्छे अच्छे गीत बजाओ, और आपको फिर से वो अपना रूहानी नशा आ जाएगा, स्मृति आ जाएगी। जैसे हनुमान के लिए कहते हैं ना, उसको स्मरण कराओ तो वो हो जाता था, हनुमान के को कोई मिला हुआ था ऐसे श्राप का, इसको स्मरण कराना पड़ेगा इसकी शक्तियों का, तो ये क्या से क्या कर सकता है। तो आप अपने आप को स्मरण कराओ, खुशी को नहीं जाने दो, वापिस खुशी समझो, जैसे गई नहीं, लकीर की तरह गई और आई, पानी पर जैसे लकीर होती है। ब्राह्मण माना जो सदा खुश दिखाई दे, सदा, नहीं तो मेरी ज्ञान योग धारणा की कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्स्ट्रा जरूरत है मुझे पुरुषार्थ करने की। तो खुशी सबसे बड़ा खजाना है ना, आप सब भी अनुभव करते हो, और आपका खुशनुमा चेहरा देखकर ही तो लोग आकर्षित हो रहे हैं, कहते हैं ये तो बड़ा खुश रहता है। हाँ, ये साधारण और अभी इतना विशेष दिखाई देता है, स्थूल रीति से भी चाहे, हाँ कहते हैं अरे ये तो बड़ा विशेष, बड़ा योगी दिखाई देता है, सदा खुश रहता है। हाँ, ब्रह्मा कुमारियों के लिए तो ये प्रसिद्ध होता चला जा रहा है, क्योंकि खुशी हमारी धारणाओं से हमारे जीवन को महान बना रही है, और इसी के लिए दुनिया तरस रही है, जिससे आप माला माल हो सारे। ऐसा जीवन बाबा ने हमें हर पल खुशी में जीने का दे दिया है, इतना बड़ा खजाना, तो इसे भी हमें बढ़ाना है, हाँ घटने नहीं देना, थोड़ी भी देर इसको घटने नहीं देना है। तो ऐसा बाबा हम बच्चों को इतना हर रीति से माला माल करता जा रहा है, संगम के ये खजाने अविनाशी हैं। सबसे बड़ी बात, ये सारे खजाने हमारे अविनाशी हैं, तो हमको तो बाबा ने अधिकार के रूप से दिए हैं, और जितना चाहे बाबा कहते हैं हाँ इससे फुलफिल होते जाओ, और संगम युग के इस ब्राह्मण जीवन को भरपूर भी करो, महान भी करो, और सदा खुशहाल भी करो। ऐसा हमारा ये विशेष जीवन है, सर्व खजानों को जमा करने का, और जो हम दो युग तो 21 जन्म तो हमको अधिकार बाबा ने वर्षे के रूप में दिया ही है, लेकिन मैं ये कहूंगी बाबा ने कहा है ये हम बच्चों को, ये समझ बाबा ने दी है कि इस समय जो हम रोल प्ले कर रहे हैं, इन खजानों को भर रहे हैं, तो आत्मा बहुत क्वालिटी वाली बन जाती है, बन रही है, आत्मा की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो जब एक चीज की क्वालिटी बढ़ गई तो वो चारों ही युगों में उसका जो रोल होगा वो विशेष होगा, उसका हर जन्म चाहे कैसा भी जन्म है, माना कलयुग में, कलयुग के अंत में भी, तो भी वो आत्मा अपने आप में क्वालिटी वाली कहलाएगी, साधारण नहीं। तभी तो देखो आपका अंतिम जन्म भी कितना अच्छा है, बुद्धि अच्छी, तन अच्छा, खा पी कितना अच्छा रहे हो, दुनिया तो बहुत कुछ होते भी उल्टा खा रहे हैं, आप तो सुलटा ही सुलटा, हाँ बाबा ने चुन लिया। ये क्वालिटियां कहाँ से आई, सारी ये क्वालिटीज इस बेस से आई, क्योंकि आपका रोल ऐसा बना हुआ है, और वो रोल बनने का युग कौन सा है, संगम पर। तभी तो आपके पांचों ही युग हाँ विशेष आत्मा वाले हो गए, साधारण आत्मा वाले नहीं, क्योंकि आपने खजानों को इस समय बड़ा जमा किया है। तो आप ऐसी हाँ इतनी खजानों से भरपूर आत्माओं को बहुत बहुत हाँ मुबारकें हो। ओम शांति।